नमस्कार साथियों, मैं छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी से योगेन मोहरसिया और आप सुन रहे हैं मोबाइल वाणी छिंदवाड़ा। श्रोताओं, जैसे कि आप जानते हैं कि मोबाइल वाणी के मंच पर हम हमेशा विषय विशेषज्ञ, शिक्षाविद और सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं से आपकी भेंट कराते रहते हैं। तो चूंकि आज हम सामाजिक संगठनों में किस प्रकार काम किया जाता है, सामाजिक संगठन क्या होता है, इन प्रश्नों की जिज्ञासा को जानने के लिए हमारे बीच में मोबाइल वाणी के मंच पर श्री रामजी शरण राय, एक सामाजिक कार्यकर्ता व एक सामाजिक चिंतनकार हैं। साथ ही आपके द्वारा किए गए कार्य सारे मध्य प्रदेश में एक अलग तरीके से और अलग विकास के साथ देखे जाते हैं। तो मोबाइल वाणी के मंच पर श्री रामजी शरण राय का स्वागत है, वंदन है। सर नमस्कार। सर
जी नमस्ते योगेंद्र जी।
सर जैसा कि आज आपसे जो चर्चा की जानी है वो सामाजिक संगठन के बारे में है, और मेरे दो तीन प्रश्न हैं जो हमारे बीच में क्यूरी आई थी, तो वो थोड़ा सा आपसे इस संबंध में चर्चा करनी है। तो सर सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को आप अपने बारे में बताएं।
जी सबसे पहले तो मोबाइल वाणी के सभी श्रोतागण को और आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से ये राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं और नमस्कार। मैं रामजी शरण राय हूं और दतिया जिले का निवासी हूं, और एक संस्था है स्वदेश, उसके साथ जुड़ के 95 से लगातार काम कर रहा हूं विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर। उसके साथ ही विभिन्न नेटवर्कों में जुड़ाव संस्थागत है, जैसे कि समर्थन है, MPBHA है, CRO है, CLDP है, तो इस तरीके से विभिन्न संगठनों के साथ जुड़ाव रहा है और कुछ समझ जो विकसित हुई है वो आपके साथ साझा करता हूँ। सबसे पहले तो अगर बात करें कि सामाजिक संगठन जो NGO का नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं, सामाजिक संगठन के नाम से तो फिर वो व्यक्तियों के दिमाग में जो NGO से नहीं जुड़े हैं उनके दिमाग में सीधे तौर पे आता है कि किसी न किसी समाज का संगठन होगा, लेकिन NGO जो होते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की अगर अब बात करें तो पहले इनका इतिहास बहुत पुराना रहा है और ये इतिहास पुरातन काल से रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग समाज में से निकल के आते हैं जो समाज में वंचित शोषित पीड़ित लोगों की सेवा भावना के माध्यम से करते हैं। तो उसी को जब नियम और कायदे आए तो उनमें एक सामाजिक संस्थाओं को काम करने के दौरान एक बाध किया गया कि आप कोई भी काम करोगे तो वो पहले पंजीकृत होना चाहिए, आपका जो भी संस्थान है, आपका संगठन है, आपके नेटवर्क है। तो फिर वो NGOs में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई। जैसे हम देखें अगर तो फर्म एंड सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो 1960 है, अब 1860 है, उसके तहत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई और बहुत सारी संस्थाएं अब जो काम कर रही हैं अपने अपने क्षेत्र में वो इनिशियल स्टेज में अपना पंजीकरण कराती हैं, और एक पंजीकरण कराने के लिए एक उनकी नियमावली है, बायलॉज है, उसके अकॉर्डिंग उनको सारे दस्तावेज और पूरा तैयारी करके फर्म एंड सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में जमा करना होता है। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो फिर धीरे धीरे जब हम काम करते हैं तो कुछ सालों बाद हमें कुछ दानदाता संस्थाएं या दानदाता नेटवर्क हमारे बीच में जुड़ जाते हैं, और विभागीय तौर पर बात करें तो विभिन्न विभागों की संचालित जो योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो या वो प्रदेश सरकार की, उन योजनाओं के साथ भी वो संस्थाएं जुड़ जाती हैं। जी तो ये संस्थाओं के बारे में था। अगला
और ये था कि जैसे आपने अभी संगठनात्मक उसका एक ढांचा बताया, एक स्ट्रक्चर बताया कि संगठन का प्रारंभ, और ये सर एक और ये था कि संगठन की गतिविधियों के बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डालने की कृपा करें।
जी तो एक तो ये है कि संगठन की गतिविधियां जब हम संस्था निर्माण करते हैं उस समय जब हम उसकी नियमावली बनाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम कुछ उद्देश्य तय करते हैं। हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करेंगे, हम युवा जागरूकता या सामुदायिक जागरूकता के क्षेत्र में, या प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्कूल संचालन, कॉलेज संचालन
जी,
या अन्य किसी तरीके का संस्थान संचालित करना चाहते हैं, तो वो उन संस्था के जब हम पंजीकरण कराते हैं उसी समय उद्देश्य स्पष्ट करते हैं और उन उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए फिर हम विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। उन आयोजनों के माध्यम से हम लोगों तक पहुंच बनाते हैं और ये कार्य योजना जो होती है उसके अनुसार विभिन्न जो कार्यक्रम चलते हैं उन कार्यक्रमों, वो शिक्षा के होते हैं, स्वास्थ्य के होते हैं, विभिन्न स्तरीय जागरूकता के होते हैं। जैसे हम बात करें जिला स्तर के अधिकारियों का एक जागरूकता, दूसरा फिर हम समाज में जो युवा वर्ग है उनकी जागरूकता का बात है, एक कॉमन प्लेटफॉर्म जो है सामाजिक उनकी जागरूकता का है, और कुछ सेवा प्रदाता जो सेवाएं दे रहे हैं क्षेत्र में उनकी जागरूकता का। जी
बिल्कुल। अच्छा सर, ये एक तो ये जागरूकता और अपना हम लोग इसमें संगठन में बात कर चुके कि एक सामाजिक संगठन इस तरीके से काम भी करेगा, उसकी ये गतिविधियां हो सकती हैं। सर एक और बात हमारे श्रोताओं को बताने की कृपा करें कि ये जैसे ये विभिन्न विकासात्मक गतिविधियां जो संचालित हो रही है उसमें हमारे युवा बेरोजगार साथी या जो अनभिज्ञ लोग हैं वो कैसे जुड़ाव, उनका कैसे जुड़ाव हो वो।
जी तो सबसे पहले तो मैं सभी मोबाइल वाणी के साथियों से कहना चाहूंगा, जो युवा वर्ग अगर है तो उनसे विशेष निवेदन रहेगा कि जब भी आप हम रोजगार की अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं तो उस समय हमें ध्यान रखना है, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमें किस ओर जाना है। अगर हम सामाजिक क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं तो फिर हमें सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत जो संस्थाएं हैं, जो धरातल पे काम कर रही हैं, उन संस्थाओं के साथ उन बात करना चाहिए, उन संस्थाओं के बारे में हमें पढ़ना चाहिए। तो जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनके ऑलरेडी वेबसाइट और ब्लॉग्स, सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, तो मेरा निवेदन है कि उनके बारे में लोग जाने जो युवा वर्ग हैं, और इस क्षेत्र में एक अपार संभावना रहती है युवाओं को रोजगार पाने की, और रोजगार के साथ साथ इसमें आम के आम और गुठलियों के दाम, तो दोनों चीजें, एक तो आपको रोजगार मिलेगा और रोजगार ही नहीं बेहतर रोजगार मिलेगा, और उसके साथ आप लोगों की सेवा का काम करते हुए अपने रोजगार को करते चले जाएंगे, तो एक पंथ दो काम होंगे ये मुझे लग रहा है। यहाँ हमारी उदर पूर्ति और जो विभिन्न जरूरतों की प्रतिपूर्ति होगी, वहीं हम एक राष्ट्र निर्माण में और सामाजिक निर्माण में, सामाजिक सेवा में अपना योगदान दे पाएंगे। तो इसमें बहुत सारे संस्थाएं जो जिले स्तर पे काम करती हैं, कुछ सब प्रदेश स्तर, राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हमें एक अवसर मिलता है। बस हमारे हुनर को हमें धारदार बनाना है, हुनर को हमें उभारते जाना है, और इस क्षेत्र में जुड़ने के लिए बेसिकली जो शिक्षा हम ले चुके हैं उसके साथ अगर हम प्रोफेशनल डिग्री समाज सेवा की लेना चाह रहे हैं तो अभी मध्य प्रदेश सरकार एक BSW का कोर्स चला रही है जन अभियान परिषद के साथ मिलके, बैचलर ऑफ सोशल वर्क और मास्टर ऑफ सोशल वर्क, दो कोर्स अभी चल रहे हैं जिनसे जुड़ के युवा अपने जो शिक्षा को है। अच्छा, इसमें अवसर एक और दिया है मध्य प्रदेश सरकार ने, एक अनूठी पहल चालू करके, ये तो उसमें ये है कि जो युवा दूसरे कोर्स कर रहे हैं उसी सेम टाइम सेम ईयर में इन कोर्सों को भी कर सकते हैं साथ साथ, और इनके क्लासेज जो रहेंगे वो संडे को लगाए जाते हैं।
बिल्कुल, बिल्कुल।
और अगर ये डिग्री पूरी हो जाती है तो विभिन्न सामाजिक स्तर पे जो सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं उनमें हमें जॉब पाने की एक अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। तो ये मेरा निवेदन है सभी युवाओं से कि अगर आप समाज सेवा के क्षेत्र में आ रहे हैं तो सेवा भावना के साथ आए, और साथ में अपनी शिक्षा को भी थोड़ा सा उसी तरफ मोड़ के और तो थोड़ी बारीकियां भी आप समझ पाएंगे पूरा।
बिल्कुल बिल्कुल सर।
जी
सर एक और ये था कि जैसे आपने बताया कि BSW MSW इस तरीके के सामाजिक अभिका मतलब वोकेशनल कोर्स करके भी युवा इसमें जुड़ सकते हैं, फ्रेशर भी जुड़ सकते हैं और सामाजिक क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। सर ऐसा एक और ये है कि समाज के लिए जो है क्या ऐसे व्यक्ति भी आ सकते हैं जो कम पढ़े लिखे ना हो या अशिक्षित हो और वो समाज के लिए कुछ देना चाहते हैं या समाज को कुछ देना चाहते हैं, कुछ सेवाओं के माध्यम से या विकास के माध्यम से या कला के माध्यम से या संस्कृति, तो क्या उनका जुड़ाव सामाजिक क्षेत्रों में हो सकता है?
जी, बिल्कुल हो सकता है योगेन जी। निश्चित तौर पे आपके द्वारा जो सवाल किया गया है, जरूरी नहीं है कि हम जैसे स्तर के हुनर जानते हैं,
बिल्कुल
वो विभिन्न चरणों तरीके के हुनर होते हैं, जरूरी नहीं है कि केवल शिक्षा में महारत हासिल हो।
बिल्कुल
हम हो सकता है कि एक अच्छा हैंडीक्राफ्ट के बहुत अच्छे
बिल्कुल
हुनरमंद
बिल्कुल
हों, उसके साथ संगीत में हम बहुत अच्छे हुनरमंद
बिल्कुल
हों,
बिल्कुल
उसके साथ हम अगर बात करें तो साहित्य में हुनरमंद
बिल्कुल
हों, तो इन सारे
बिल्कुल
चीजों में अगर जिस भी क्षेत्र में हम अपनी विशेषज्ञता रखते हैं
बिल्कुल
उस क्षेत्र में, और उसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई डिग्री हो, आपका हुनर उस समय काम आता
बिल्कुल
है
बिल्कुल
और हुनर के माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर चूंकि आज के युवा के मन में सीधा तौर पर रहता है नौकरी पाना है,
बिल्कुल
तो मैंने इसीलिए वो प्रोफेशनल डिग्री जो दो बताई हैं, जैसे MBA करते हैं हम
बिल्कुल
मैनेजमेंट के
बिल्कुल
लिए, उसी
बिल्कुल
तरीके से समाज सेवा के लिए अगर हमें डिग्री करना है तो बड़े सहजता और सरलता के साथ हम दूसरे कामों में व्यस्त रहते हुए, पढ़ाई छूट गई है, अनरेगुलर हो गए हैं, तो हम उन डिग्रियों को हासिल कर सकते हैं। ये मैंने बात कर रखी थी।
बिल्कुल
और
बिल्कुल
हम विभिन्न विधाओं में जहाँ भी हम पारंगत हैं, हम अगर नुक्कड़ नाटक जानते हैं, हम कठपुतली नाटक जानते हैं, तो
बिल्कुल
इनमें भी बहुत सारे जो बड़े NGOs हैं, बड़े सामाजिक संगठन हैं, यूनिसेफ है, एक्शन एड है, UNDP है, UNFPA है, तो ये बहुत सारे संगठन ढूंढते रहते हैं ऐसे हुनरमंद लोगों को, वो
जी
अपनी विधाओं के माध्यम से कैसे लोगों के बीच में सामाजिक जो सरोकार हैं उनके बारे में जाके बता सकें।
बिल्कुल। अच्छा सर
जी
ये अभी जैसे श्रोताओं आपको सर ने बताया कि जरूरी नहीं कि आप शिक्षा या उसमें आप इस चीज में शिक्षित हो, बल्कि आप एक कला में हुनर रखते हैं तो भी आप अपनी अपना हस्तक्षेप इन क्षेत्रों में कर सकते हैं। अच्छा सर एक और बात थी कि ये तो सामाजिक क्षेत्रों की और सामाजिक सरोकार की बातें हुई। सर आप ये बातें हैं कि आप समाज के लिए आपका कोई संदेश या हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए या जो आने वाले युवा हैं वो कैसे उसमें जाएं, तो उनके लिए कोई संदेश अगर आप प्रसारित करें तो अच्छा होगा।
जी, तो सभी जो युवा मुझे सुन रहे हैं उन सभी से, और उनसे निवेदन है कि जो नहीं सुन रहे हैं उन तक भी मेरी बात पहुंचाएं
बिल्कुल
कि समाज में हम, जिस समाज में हम रह रहे हैं, हमारे किसी विद्वान ने कहा है, पे बैक टू सोसाइटी, हम जिस समाज का पानी पी रहे हैं, जिस समाज की हवा खा रहे हैं, जिस समाज का हम अन्न और सब सारे संसाधन उपयोग कर रहे हैं, उस समाज को हम बदले में क्या दे रहे हैं।
बिल्कुल
तो इसके लिए हमें जहाँ भी जिस क्षेत्र में जाएं, भले ही सामाजिक क्षेत्र में आए ना आए, आप फौज में चले जाएं, आप पुलिस में चले जाएं, आप एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाएं, या अन्य किसी क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, तो वहाँ भी हमें सामाजिक सरोकार के जितने भी आयाम हैं उनको अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेना चाहिए। और ज़्यादा नहीं तो एक महीने में 2 दिन 3 दिन तो कम से कम सामाजिक गतिविधियों के लिए अपने जीवन का हिस्सा हमें देना चाहिए, क्योंकि जिस समाज ने हमको इतना बड़ा कर दिया, इतना पाल पोस के इस लायक बना दिया, तो मुझे लग रहा है कि उस समाज के प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां
जिम्मेदारी है।
बनती हैं,
बिल्कुल बिल्कुल
तो उन जिम्मेदारियों के निर्वहन करने के लिए अपने स्तर पे आप अपने काम कर सकते हो। जो भी जरूरतमंद दिख जाए उसको कुछ अगर आप देने की क्षमता में हैं दें, और नहीं दे पा रहे हैं तो जो संचालित शासकीय कार्यक्रम, शासकीय योजनाएं हैं, उन योजनाओं से जोड़ने के प्रयास में उनका थोड़ा सहयोग कर दें। अगर इस तरीके से हम लोगों की मदद कर देंगे तो मुझे लगता है एक बूढ़े व्यक्ति को जिसको कोई नहीं है जिसके परिवार में, और उस व्यक्ति को अगर आजीविका के लिए कुछ सहयोग की जरूरत है, तो हमने अगर वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक परिवार पे सहायता पेंशन
बिल्कुल
दिलवा दी, या कोई विधवा परित्यक्ता महिला है उनको कोई पेंशन, या किसी योजना कल्याणी पेंशन योजना जैसे है, ऐसी
बिल्कुल
योजना से जोड़ने में हमारा कुछ नहीं जाएगा, एक कागज और पेन की स्याही जाएगी।
बिल्कुल बिल्कुल
और संबंधित विभाग और संबंधित अधिकारी को जाके एक दो बार फॉलो अगर करेंगे तो उसको आजीवन वो सहयोग मिल जाएगा,
बिल्कुल
तो इस
बिल्कुल
तरीके से भी हम लोगों का सहयोग कर सकते हैं। जी
बिल्कुल। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे मोबाइल वाणी पर श्री राम जी शरण राय, एक सामाजिक कार्यकर्ता व एक सामाजिक चिंतनकार, जिला दतिया से हैं। और मोबाइल वाणी के मंच पर आपने जो अपना एक अमूल्य कीमती समय हमें दिया मोबाइल वाणी, उसका बहुत बहुत आभारी है। सर, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आपका कि आपने
जी
मोबाइल वाणी
योगेन
को
जी,
सर।
आपकी मोबाइल वाणी की टीम को भी बहुत बहुत आभार कि मुझे इस अवसर के लिए चुना और
जी
अपनी बात रखने का अवसर दिया। तो पुनः एक बार मोबाइल वाणी की टीम को, मोबाइल वाणी के श्रोताओं को जो मुझे सुन रहे हैं, उन सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक साधुवाद।
जी जी बहुत बहुत धन्यवाद।